एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक पर बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 450 साल पहले खुद से एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा था,
और वो सवाल आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल। सवाल था, मैं जानता क्या हूँ?
और ये सवाल पूछने वाले थे 16वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल द मॉन्टेन। हम उनके विचारों की दुनिया में उतरेंगे विलियम एम हैमलिन की किताब मॉन्टेन के जरिए।
और ये सवाल आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर किसी को लगता है कि उसे सब पता है।
हाँ, हर कोई अपने विचारों को लेके पूरी तरह पक्का है।
सही बात है। सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनलों तक हर तरफ आपको सर्टेनिटी, मतलब पक्के तौर पर यही सच है वाली बातें मिलेंगी।
ऐसे में मॉन्टेन की वो विनम्रता और खुद से सवाल पूछने की हिम्मत एक ताजी हवा के झोंके की तरह लगती है।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान का खुद को जानने का सफर पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक नया रास्ता बन गया।
चलिए, तो इससे पहले कि हम मॉन्टेन के विचारों में गोता लगाएं, किताब के लेखक विलियम एम हैमलिन के बारे में थोड़ी बात करते हैं।
हाँ, ये जरूरी है, आखिर वही तो हमारे गाइड हैं इस सफर में।
तो कौन है ये हैमलिन?
वे वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
लेकिन क्या सिर्फ विशेषज्ञ होना काफी है? मतलब उनकी खासियत क्या है?
मेरे ख्याल से हैमलिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मॉन्टेन को सिर्फ एक दार्शनिक की तरह नहीं देखते।
अच्छा।
हाँ, वो उनके साहित्यिक पक्ष को, खासकर शेक्सपियर जैसे लेखकों पर उनके प्रभाव को भी सामने लाते हैं जो मॉन्टेन की तस्वीर को पूरा करता है।
सही कहा। और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक मॉन्टेन पर रिसर्च करते हुए बिताए हैं।
बिल्कुल। तो वो सिर्फ हमें तथ्य नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो हमें उस इंसान से मिलवा रहे हैं जो पत्थरों की दीवारों वाले एक टावर में बैठकर लिख रहा था, लेकिन जिसके विचार आज भी हमारी डिजिटल दुनिया में गूंज रहे हैं।
तो सवाल उठता है कि हैमलिन की ये किताब सिर्फ एक जीवनी है या उसे कुछ ज्यादा है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये एक बौद्धिक जीवनी है।
बौद्धिक जीवनी?
हाँ।
यानी ये इस बात पर कम ध्यान देती है कि मॉन्टेन ने कब क्या खाया या कहाँ सफर किया,
और इस बात पर ज्यादा कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, उनके विचार कैसे विकसित हुए।
बिल्कुल।
किताब का मुख्य तर्क ये है कि मॉन्टेन ने एक बहुत ही मतलब क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने दर्शन को ऊंचे आसमान से उतारकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया।
और ये उन्होंने किया कैसे?
खुद को ही अपनी स्टडी का विषय बनाकर।
हाँ।
और मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लगती है, उस दौर में जब ज्ञान का मतलब था धर्म ग्रंथों या अरस्तु जैसे पुराने दार्शनिकों को कोट करना,
हाँ,
मॉन्टेन ने अपनी किताब की शुरुआत में ही लिख दिया, पाठक, इस किताब का विषय मैं खुद हूँ।
अरे वाह, सोचिए ये कितना बड़ा और साहसी बयान रहा होगा उस वक्त।
हाँ, ये कहने जैसा था कि एक आम उलझन में पड़े इंसान की जिंदगी भी उतने ही गहरे सत्यों से भरी हो सकती है जितने किसी महान ग्रंथ में है।
तो चलिए इसी साहसी सोच के साथ किताब के सफर पर निकलते हैं। हैमलिन हमें सबसे पहले उस दुनिया में ले जाते हैं जहां मॉन्टेन पले बढ़े, 16वीं सदी का फ्रांस,
जो कोई शांत जगह नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भयानक धर्म युद्धों का समय था।
हर तरफ कट्टरता और हिंसा। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को जिंदा जला रहे थे और हर पक्ष को यकीन था कि सिर्फ वही सही है
और दूसरा पक्ष शैतान है।
हाँ।
इसी माहौल के बीच उनके पिता ने उनकी परवरिश के लिए एक अनोखा प्रयोग किया।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने तय किया कि उनका बेटा सिर्फ लैटिन भाषा सुनकर और बोलकर बड़ा होगा।
मतलब घर के नौकरों से लेकर ट्यूटर तक,
हर कोई सब उनसे सिर्फ लैटिन में बात करते थे। नतीजा ये हुआ कि फ्रेंच से पहले लैटिन उनकी मातृभाषा बन गई।
और इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने सबसे प्यारे दोस्त एटियन द लाबोइसी से हुई।
उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन ज्यादा चली नहीं। लाबोएसी की बहुत कम उम्र में मौत हो गई।
ओहो।
और इसका मॉन्टेन पे बहुत ही गहरा असर पड़ा। माना जाता है कि इसी दोस्त को खोने के बाद जो अकेलापन आया, उसी ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया।
जैसे वो उस खाली जगह को अपने विचारों से भरना चाहते हों।
शायद। और फिर आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, 38 साल की उम्र में 1571 में।
वो सार्वजनिक जीवन से एक तरह का संन्यास ले लेते हैं।
हाँ, और अपने महल के एक टावर की लाइब्रेरी में चले जाते हैं और यहीं से उन्होंने कुछ ऐसा लिखना शुरू किया
जिसे आज हम एसे यानी निबंध कहते हैं।
बिल्कुल, और ये नाम भी उन्होंने खुद ही दिया। फ्रेंच में एसे का मतलब ही होता है कोशिश करना या आजमाना।
अच्छा, तो वो कोई ज्ञानी गुरु बनकर आखिरी सच नहीं बता रहे थे?
नहीं, वो तो बस अपने विचारों को कागज पर तौलने की, अपने अनुभवों को समझने की एक कोशिश कर रहे थे।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि किताब बताती है, कि वो पूरी तरह से दुनिया से कटे नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बॉर्डो शहर का मेयर भी बनाया गया और उन्होंने युद्ध के समय कैथोलिक राजा और प्रोटेस्टेंट नेता के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश भी की।
तो वो सिर्फ टावर में बैठकर सोच नहीं रहे थे, बल्कि अपनी सोच को असली दुनिया की मुश्किलों में परख भी रहे थे।
हाँ, और इसी दौरान उन्होंने जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली की लंबी यात्रा की। इससे उन्हें ये देखने का मौका मिला कि दुनिया में जीने के कितने अलग अलग तरीके हैं।
और इन अनुभवों ने उनके लेखन को और भी गहरा बना दिया होगा।
यकीनन।
किताब में उनके एसेज के 3 खंडों का जिक्र है। पहले 2 खंडों में वो ज्यादातर प्राचीन दार्शनिकों के सहारे चलते हैं ना?
बिल्कुल, जैसे उनका मशहूर निबंध है दार्शनिक होना मतलब मरना सीखना है। उसमें लगता है जैसे वो मृत्यु या दर्द जैसे बड़े विषयों को समझने के लिए सेनेका जैसे स्टोइक दार्शनिकों का हाथ थामकर चल रहे हैं।
और इसका कारण भी समझ आता है, चारों तरफ धर्म युद्ध की हिंसा थी, अनिश्चितता थी।
हाँ, ऐसे में स्टोइक विचार कि अपनी भावनाओं पर काबू रखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता मत करो, एक तरह का मानसिक कवच रहे होंगे।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा इस कवच में नहीं रहे। किताब का 3रा खंड जो बाद में आया वो बिल्कुल अलग है।
हाँ, और वही असली माउंटेन है।
अच्छा,
वहाँ वो इन सब बैसाखियों को छोड़ देते हैं। निबंध लंबे हो जाते हैं, बिखरे हुए, ज्यादा निजी। वो किताबी ज्ञान से हटकर अपनी जिंदगी, अपनी बीमारियों, अपनी आदतों के बारे में बात करते हैं।
मतलब वो सिद्धांतों को छोड़कर जीवन को उसकी पूरी उलझन में गले लगा रहे थे।
बिल्कुल, यहीं पर वो कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव से मिलता है, शरीर से मिलता है।
और किताब का आखिरी हिस्सा उनके प्रभाव के बारे में है जो हैरान करने वाला है।
बहुत ज्यादा। शेक्सपियर से लेके डेकार्त तो नीचे तक यूरोप के बड़े बड़े विचारक और लेखक उनके विचारों से प्रभावित हुए।
इसका कोई सीधा उदाहरण है?
हाँ, एक बहुत सीधा उदाहरण है। शेक्सपियर के मशहूर नाटक द टेम्पेस्ट में एक पूरा भाषण है जो लगभग शब्द दर शब्द माउंटेन के निबंध नरभक्षियों पर, ऑफ कैनिबल से लिया गया है।
अरे वाह,
ये दिखाता है कि उनके विचार सिर्फ दर्शन की दुनिया तक सीमित नहीं थे।
नहीं, वो साहित्य और कला की दुनिया में भी हलचल मचा रहे थे।
तो अगर हमें माउंटेन के इन बिखरे हुए विचारों का सार निकालना हो तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? सबसे पहली बात तो वही उनका आदर्श वाक्य है,
मैं क्या जानता हूँ।
हाँ, क्यों सेज? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये कट्टरता के खिलाफ एक हथियार है।
उस दौर में जब लोग सच के नाम पर एक दूसरे की जान ले रहे थे,
तब ये पूछना कि क्या मुझे सच में कुछ पता भी है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। ये कहने का एक तरीका था कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ
और शायद सामने वाला भी थोड़ा सही हो। और उनका एक और विचार तो ऐसा है जो आज के हम बनाम वो वाले माहौल पर सीधी चोट करता है।
आप नरभक्षियों पर वाले निबंध की बात कर रही है ना?
हाँ बिल्कुल।
कमाल की बात है, 16वीं सदी में कोई ये सवाल उठा रहा था कि जिन्हें हम जंगली या बर्बर कहते हैं, क्या हम यूरोपीय लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को जिंदा जला रहे हैं
उनसे कम बर्बर हैं?
हाँ, उन्होंने कहा कि हम बर्बरता उसे कहते हैं जो हमारी आदत में नहीं है।
ये तो अपने समय से सदियों आगे की सोच थी।
बिल्कुल, ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद जिसे कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं उसकी नींव थी।
और तीसरी बड़ी बात जो मुझे बहुत अनोखी लगती है वो है शरीर को महत्व देना।
ये सच में अनोखी बात थी। उस दौर का दर्शन सिर्फ आत्मा, तर्क और मन की बड़ी बड़ी बातें करता था। और यहाँ माउंटेन अपनी गुर्दे की पथरी के असहनीय दर्द के बारे में लिख रहे हैं।
हाँ।
अपनी भूख के बारे में, अपनी आदतों के बारे में।
उनके लिए शरीर और मन अलग अलग नहीं थे?
नहीं थे। उनका मानना था कि हमारा शरीर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम उसकी सुने तो।
और आखिर में शिक्षा पर उनके विचार, वो रटे रटाए ज्ञान के सख्त खिलाफ थे।
हाँ, उनकी एक बहुत मशहूर कहावत है कि हमें एक वेल फिल्ड हेड नहीं,
मतलब जानकारी से भरा हुआ सिर नहीं,
बल्कि एक वेल मेड हेड बनाना चाहिए, यानी एक ऐसा दिमाग जो सोचना समझना जानता हो।
उनके लिए शिक्षा का मतलब दिमाग में तथ्य भरना नहीं था?
नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमाग तैयार करना था जो सही गलत का फैसला कर सके, जो जीवन को संतुलित तरीके से जी सके।
माउंटेन के लेखन में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। पहला तो यही है, मैं क्या जानता हूँ।
हर बातचीत, हर बहस शुरू करने से पहले खुद से पूछने वाला सवाल।
एक और जो हमने अभी बात की, हर कोई उस चीज को बर्बरता कहता है जो उसके रिवाज में नहीं है।
यह पंक्ति तो आज की दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखती है। ये हमें दूसरों को जज करने से पहले अपने पूर्वाग्रहों को देखने की चुनौती देती है।
मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है। दुनिया में सबसे बड़ी बात ये जानना है कि खुद का कैसे हुआ जाए,
मतलब अपनी शर्तों पर जीना, बाहरी दबावों और समाज की उम्मीदों के बीच अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को, अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखना।
स्वार्थी होना नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
और ये देखिए, खुद के बारे में उनका नजरिया कितना ईमानदार है। मैंने खुद से बड़ा कोई राक्षस या चमत्कार नहीं देखा।
ये आत्म स्वीकृति और आत्म आलोचना का एक सुंदर संतुलन है। वो ये स्वीकार कर रही है कि इंसान विरोधाभासों से भरा है।
वो एक ही समय में अद्भुत भी हो सकता है और भयानक भी,
और ये ठीक है।
तो सवाल ये उठता है कि हम 400 साल पुराने इन विचारों का आज की जिंदगी में क्या करें, इन्हें कैसे लागू करें।
सबसे पहली और सीधी सीख है बौद्धिक विनम्रता। अगली बार जब हम सोशल मीडिया पर किसी से बहस कर रहे हों या ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात पर अड़े हों, तो एक पर के लिए मॉन्टेन का सवाल याद कर सकते हैं,
मैं क्या जानता हूँ।
हाँ, शायद सामने वाले की बात में भी कोई सच्चाई हो।
दूसरी चीज है आत्मचिंतन का अभ्यास। मॉन्टेन ने तो निबंध लिखे, लेकिन हम शायद एक डायरी लिख सकते हैं,
या बस दिन में 10 मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को देख सकते हैं। ये समझना कि हमारे विचार और भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ये सामान्य है, इससे बहुत सुकून मिलता है।
और उनके विचार हमें अपने शरीर से जुड़ने के लिए भी कहते हैं।
बहुत जरूरी बात है ये। आज की डिजिटल दुनिया में हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं,
चाहे वो थकान हो, भूख हो या तनाव।
बिल्कुल, मॉन्टेन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे शरीर के पास भी अपना एक ज्ञान है जिसे सुनना जरूरी है।
और आखिर में अपनी सीमाओं को पहचानना। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है,
मॉन्टेन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अपूर्ण है और यही उसकी खूबी है।
एक अच्छा जीवन अपनी कमियों और असंगतियों के साथ ही जिया जाता है।
भागना छोड़ देना ही शायद असली परफेक्शन है।
तो इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्चा ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों या सिद्धांतों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के ईमानदार विश्लेषण में छिपा है। मॉन्टेन ने हमें खुद को समझने का एक तरीका दिया जो किसी भी बाहरी सत्ता, किसी गुरु या किसी विचारधारा से ज्यादा भरोसेमंद है। उन्होंने हमें खुद का दोस्त बनना सिखाया।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मॉन्टेन कितने आधुनिक लगते हैं,
है ना?
शक करना, सहिष्णु होना, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना, अपने शरीर की सुनना, ये सभी विचार आज के ध्रुवीकृत समाज के लिए दवा की तरह हैं।
उन्होंने सिखाया कि संदेह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है,
एक ऐसी ताकत जो हमें कट्टर होने से बचाती है
और सीखने के लिए हमेशा तैयार रखती है।
अरांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।